मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन के सामान्य द्रव्यधिकार में 114वीं गाथा चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही है, अब इसे समेटें, आज खत्म करें। और कल से फिर और भी अधिक महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि वो सप्तभंगी संबंधी गाथा है। इनमें से पर्यार्थिक नई को की चक्षु को एकांततः माने पूर्णतः सर्वथा पूरी तरह अच्छी तरह बंद करके जब मात्र खुली हुई दिव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्रिंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को नहीं देखने जानने वाले जीवों को यह सब द्रव्य ही है ऐसा भासित होता है। चार लाइन पांच लाइन का वाक्य है, लेकिन मतलब सिर्फ इतना ही है कि पर्यार्थक नये की चक्षु को बंद करके देखो और द्रव्यार्थक नये की चक्षु को खुली रखकर देखो, वो बंद पूरी तरह से होना चाहिए, थोड़ा बहुत उससे दिखता रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पर्याय मन मनुष्य देव नार की इनमें एक आत्मा ही दिखाई देगा। इतना है, ये बात कही है कि यदि अब उसमें ये है कि नहीं है, अब जो भी चर्चा होगी क्या है और क्या नहीं है उस आत्मा में, वो सिर्फ गौण करने के, नहीं है माने गौण करना और है माने मुख्य करना, इस अर्थ में है, वास्तव में निषेध के अर्थ में नहीं है। ऐसा हुआ बीच बीच में कि जब उसे गौण करने के लिए इतना जोर दिया कि पूरी तरह बंद करो, ये करो ये करो, तो कहा तो था चक्षु को बंद करने के लिए, पर्याय को देखने वाली चक्षु को सर्वथा बंद करो। उसने उसकी विषयभूत वस्तु की ही सत्ता से इंकार करने लगे कि वो है ही नहीं, कि नहीं नहीं हम इतने कहते लोक में नहीं है लेकिन आत्मा में नहीं है, कहते ना कहते तो आत्मा में नहीं है और लोक में है, ये दोनों बात आपको स्वीकार है, कहां साहब ये स्वीकार है, तो फिर वो आत्मा में नहीं है तो कहां है, तो ये भी तो निर्णय अपन को करना पड़ेगा ना कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस ये है कि आत्मा में नहीं है। कि देखो पूरी वस्तु व्यवस्था को हमें समझने के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर नक्की करना पड़ेगा और फिर हम श्रद्धा के लेवल पर बिल्कुल भले ही उसकी पूरी तरह उसको गौण कर दें, लेकिन ज्ञान के लेवल पर उसके अस्तित्व से हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग उसके अस्तित्व से इंकार करने लगे वे बिल्कुल गारंटी से एकांतवादी हैं। अभी तुम एकांतवादी हो, अनेकांतवादी के बौद्ध और सांख्य एकांतवादी हैं और हम अनेकांतवादी हैं, न्याय शास्त्र के एकांतवादी और अनेकांतवादी नहीं खोजना, ये तो अध्यात्म के एकांतवादी और अनेकांतवादी की चर्चा है। वो है, उसका अस्तित्व हमें पूरी तरह स्वीकार होना चाहिए और फिर हमें कुछ द्रव्यार्थक नये को मुख्य करें और पर्यार्थक नये को गौण करें, ये बात है। एक पंक्ति और थी आपके नए चक्र में कि प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ में एक विशेष पक्ष को जानने की दृष्टि से उसे गौण और मुख्य करके जानना उसका नाम नहीं है। प्रमाण के द्वारा गृहित अर्थ, इसमें ये शब्द पड़ा हुआ है, माने ऐसा नहीं है प्रमाण है ही नहीं। प्रमाण की जो मूल वस्तु है, पहले तुमने वो द्रव्य नक्की किया ना, उत्पाद वह ध्रुव एकदम सत द्रव्य गुण पर्याय वाला, तो वो जो द्रव्य नक्की किया, अब उसमें ये मुख्य गुण व्यवस्था है। पहले वो जो ये है, ऐसी एक वस्तु है द्रव्य गुण पर्याय में, जो 93वीं गाथा में पहले ही कह दिया, अथो कलु दब्य मयो दब्बाणी गुण पैज्ञ भंगानी पज्जय, और क्या है, तेहम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया, 93वीं गाथा में ये बात कह दी थी। तो इसे कायम रखकर अब सारा मुख्य और गौण का हमें भेद समझना है। शायद नए चक्र में शतरंज के का उदाहरण लेकर के ये बात स्पष्ट की है कि शतरंज के दो खिलाड़ी हैं, वो परस्पर में अत्यंत घनिष्ठ मित्र होने पर भी शतरंज की दृष्टि से अत्यंत शत्रु हैं। ये दो बातें उसमें समझाई। और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की एक कहानी है और उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, कि जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो जानते होंगे। और उसमें सिर्फ यही बात बताई है कि दो राजे हैं, दो राजा हैं, मुसलमान मतलब बादशाह कौन है, दो बादशाह थे और वे आपस में शतरंज खेलते हैं रोजाना चार चार छह छह घंटे, वे शतरंज में बैठे रहते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, दोनों की पत्नियां बहुत बुलाती हैं तो हाँ हाँ कहते रहते हैं और नहीं पहुंचते हैं। और उसमें तो यहां तक लिखा कि वो दोनों की पत्नियां इस बात की सख्त विरोधी हैं, क्योंकि जब ये शतरंज में मस्त हो जाते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो ये बताया कि कोई भी पत्नी अपने घर में शतरंज की बाजी नहीं जमने देती थी, यहां मत खेलो, खेलते थे तो शतरंज की वो उठाकर फेंक देती थी, गोटियां गायब कर देती थी, माने विद्रोह के लेवल तक वो कहती थी। और दूसरे के यहां भी यही हालत थी, दोनों के घर आसपास थे, बहुत बड़े घर थे, कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर थे, लेकिन वो पत्नियां के इसमें ही मग्न हो जाएंगे तो वे अपने घर में नहीं खेलने देते थे। तो वे दोनों मिलके तीसरी जगह जाते थे कहीं और वहां खेलते थे। और उसमें जो अंतिम दृश्य है वो ये है कि वे दोनों नवाब थे तो उन पर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी, किले को के अंदर घुस आए, किला के दरवाजा तोड़ दिया और समाचार लाने वाले लाए कि भाई आ गए आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है अभी, और चल चाल चलते हूं। तो उसमें इतने मगन थे कि जब तक आकर उन लोगों ने उन्हें वहीं गिरफ्तार नहीं कर लिया तब तक वे चाल चलते रहे, और गिरफ्तार भी कर लिया तो वे कहने लगे जरा रुक जाइए एक चाल चल लेने से। उस प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने जिस खूबी से उस दृश्य को प्रस्तुत किया है वो अपने आप में एक अद्भुत बात है। सिर्फ बताना ये कि ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं व्यसनी होते हैं, इसलिए ये इनको निंदनीय मानते, अच्छा नहीं मानते। आजकल तो खेलों को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, और शतरंज को यूनिवर्सिटी में भी हो विश्व चैंपियन और फलाने चैंपियन ये बनते हैं, लेकिन उस वक्त इसमें इतनी गृहता, इतनी एक राज्य चला जाए वे जान से मार डालें तो भी उन्हें शतरंज की वजह से उसे फुर्सत नहीं की। तो वे इतने घनिष्ठ मित्र थे कि एक दूसरे को कोई ऐसा हाथ लगा के देखे तो वो दूसरा अपनी जान की बाजी लगा करके उसे बचाएगा। उसके विरुद्ध एक शब्द कह के बोले, पत्नी कहे ना उनसे लड़े कि तुम यहां आ जाते हो रोजाना, इसलिए सारा खेल बिगड़ता है, कल से मेरे यहां नहीं आना। तो पत्नी से लड़े, तलाक देने तक की धमकी दे कि तूने कल से यदि उससे ऐसा कुछ कहा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मैंने इतनी गहरी दोस्ती, समझ में ना। और शतरंज में इतने शत्रु कि भाई ये हमारा इतना दोस्त है तो इसके बादशाह में को क्या हो रहा है, सह लग रही है, मात हो रही है, तो मैं एक दफे तो कम से कम उसके प्यादे को तो नहीं मारूं, कम से कम क्यों ऊंट घोड़े तो नहीं मारूं। मेरे कहने का अर्थ है कि नहीं, उसे तो हर कीमत पर यदि वो बेईमानी करे कि नहीं खेलना, वो खत्म करो, खत्म करो, नहीं बैठ पहले। यानी वो शतरंज में जितने पक्के खिलाड़ी शत्रु और जीवन में उतना ही बड़े मित्र। अब तुमको गौण करने में उतने ही बड़े शत्रु और उनके अस्तित्व स्वीकार करने ही कोई मारे तो उसके पीछे भी जान की बाजी लगा दे, ऐसी दृष्टि चाहिए, समझे ना। 114वीं गाथा में दीर्घार्थ मेघ के बारे में जो अपने पांच पंक्तियां पढ़ी उनके बारे में मैं आपको बताओ कि गौण करना और मुख्य करने का जो स्वरूप है वो हमें आना चाहिए, है ना। अब जब दिव्यार्थिक चक्षु को एकांतता, पूर्णता, सर्वता, पूरी तरह, अच्छी तरह, देखो संस्कृत में भी देखना तो बिल्कुल दोनों के लिए एक से ही शब्द पड़े हैं। कल मैंने परसों का कई दफे कहा कि हमें चंद्र की एक स्टाइल है, बिल्कुल नक्की हू बहू उसी तरीके से उस बात को दोहराना। बंद करके मात्र खुली हुई पर्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है तब जीव द्रव्य व्यवस्थित नारकपना, त्रंजपना, मनुष्यपना और देवपना और सिद्धपना पर्याय विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वालों को वह जीव द्रव्य अन्य अन्य ही भाषित होता है। अन्य अन्य माने मनुष्य, देव, नारकी। माने जब हम उसे पर्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो ये मनुष्य ही है, ये आप सोच रहे एक दफे, ये मनुष्य ही है, त्रंच नहीं है, ये देव नहीं है कि मैं कह रहा हूं ना, समझिए ना। माने जब उसे पर्यार्थिक नैकी चक्षु को मुख करेगा तो वो ही पर्याय मुख होगी, अन्य पर्याय भी गौण होगी और उसमें जो द्रव्यत्व है छिपा हुआ वो भी गौण होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? कैसे होगा कि हम जब देव, मनुष्य, ये पर्यायों को अलग अलग माने तब तो हम कहेंगे ये मनुष्य वही देव है, लेकिन वो तो अकेले मनुष्य पर्याय तक ही सीमित है क्या। तो वो जो देवत्व के लिए अनेक पर्यायों में अनुसृति से रचित प्रवाह चाहिए वो नहीं बनता, समझना क्या अच्छा काम, समझना। वो प्रवाह चाहिए ना, मैं मनुष्य हूं, नरक से आया है तो अपने को नारकी नहीं है, तुरंत से आया तो अपने को कैसा नहीं कि मैं आया हूं और मैं गधे की पर्याय से मनुष्य हुआ हूं, मुझे जाति स्मरण भी हो गया है और मुझे पता चल गया है कि मैं गधे की पर्याय से आया हूं। दिक्कत तो यही है कि ऐसे लोगों को भी जाति स्मरण तो होता ही होगा ना, ऐसी कोई जाति स्मरण बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी चीज कि मति ज्ञानावरण कर्म के छेद सब की एक विशेषता है। और जब ऐसा समझे कि मैं अभी 80 वर्ष का हूं तो कम से कम सत्तर बहत्तर वर्ष तक की बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। कितने वर्ष पुरानी बातें मुझे याद हो सकती हैं, और मैं मर के दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष का हुआ तो चार वर्ष पुरानी बात याद नहीं रह सकती। मैं छह वर्षों की मर्यादा तो वो ही है ना, अब वो जो बदल जाता है ना सदे, तो उसे वो नहीं दिखती, उसे आश्चर्य लगने लगता है। क्या आश्चर्य हो गया, हमें तो बहत्तर बहत्तर वर्ष की बात याद है, और यदि पांच वर्ष की पहले की याद हो गई, ज्यादातर बच्चों को होता है ना, जाते हैं ना तो फिर बताते हैं मैं यहां था, ये मेरी माँ थी, ये मेरे बाप थे, ये मेरे पत्नी थी, ये मेरे बच्चे थे, ऐसा बताता है करता है। तो उसमें आश्चर्य क्या है, क्यों अभी वो घटना घटे हुए चार साल भी नहीं हुए है ना, तो वो याद आना कहां कठिन है, कितना सूक्ष्म ज्ञान होना इसमें कहां दिक्कत है। अब लेकिन कोई अच्छी पर्याय से आया हो एक्चुअल में, तो उसे जाति स्मरण हो और उसे पता चले तो वो सबको कहता करता है कि मैं ऐसा था, मैं राजा था, मैं ये था, मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा समझिए ना। और उसी के ज्ञान में ये आए कि मैं गधा था, इस कुमार के यहां रोजी ना मिट्टी धोया करता था तो वो बिल्कुल चुप रहता है, माँ बाप से भी नहीं कहता है, वो समझता है मैं बेवकूफ भी ऐसा लगता होगा, वो उसे उस ज्ञान ज्ञान नहीं मानता है क्या, कि मेरी कल्पना लोग उसे इंकार कर देता है, क्या समझ रहे ना। लेकिन ऐसे लोगों को भी तो हो सकता है ना, जितने जितने जाति स्मरण वाले सामने आते हैं वो सब वो महिमा वाले ही क्यों आते हैं क्या। देखो अपने यहां ये बहुत ही स्पष्ट है कि मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि भी हो तो मरकर गारंटी से देव होता है। मनुष्य त्रंज तो होता ही नहीं, नारकी तो होता ही नहीं, लेकिन वो द्वारा मनुष्य भी नहीं होता, आप समझे ना। और फिर नारकी देव मर के फिर वो मनुष्य होता है। वो जो मरीच के जीव के बारे में बताया था ना संजय ने, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य, और भी पुराणों में आता है सब जगह कि मनुष्य देव होते रहते हैं। तो मेरा मतलब पिछला सीधा भव तो किसी के सामने है ही नहीं, शांति नहीं क्या, पिछला सीधा भव नहीं है उसके सामने, सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा है यदि वो तो। और मैंने इसमें त्रिकरण में इसमें लिखा है ये राजुल माने महाकाव्य में कि वो राजुल कहती है मैं दीक्षा लूंगी दीक्षा लूंगी, दीक्षा कैसे लेगी, कि नवीन आपने ले ली ना, उनने किसी से नहीं पूछी थी, मैं क्यों पूछूं, आप मुझे क्यों रोकते हैं, कि भाई सम्यक दृष्टि थे और मैं तुझे जानना है। महिला कोई भी मर कर महिला में पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि, इसलिए जन्म से तू सम्यक दृष्टि नहीं थी इसकी तो गारंटी हो गई है की तो गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं है की तो हो गई। पर आठ वर्ष की उम्र में क्या पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है, तो आठ वर्ष की उम्र से तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा पैदा, इसकी भी गारंटी हो गई। अब तू जितने भी वर्ष की है, अब शादी तो हो रही ना अभी, तो अभी अपने ऐसा एवरेज मानो हिसाब से कभी साठ सत्तर वर्ष का आदमी होता है तो लड़की की बीस बीस एक वर्ष की उम्र में शादी हो रही होगी, तो कितने दिन, ये दस बारह वर्ष की तो काल है, तो इसमें तुझे याद तो होगा ना कैसे समझना ऐसे ही हो गया होगा तुझे सोते सोते में। मैं और तेरे में कितना फर्क है वे तदो मोक्षगामी, और हमारे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं कि कितने भव में मोक्ष जाएंगे, हम तो जल्दी से जल्दी जाएंगे लेकिन नक्की तो नहीं बता सकते हम क्यों क्या इतने भव में जाएंगे। अब एक भव बीच में देव का हो गया, तनार्की का हो गया, दत्तवंशी का हो गया, तो वो है अरबों बरस का। तो अरबों बरस का जाति स्मरण हो ख्याल में ना, तो जाकर के वो पार पड़े, तब वो जाके उसे अगला भव याद आए। समझ में आ गया आपके? एक एक भाई थे वहां, उनका कमल कमल नाम था, अभी भी होंगे, रमेश कमल। वो गाना गाते थे गुरुदेव के सामने, तो बहुत अच्छा गला था और खूब गुजराती में ऐसे खूब चिल्ला चिल्ला के गाते थे, ओ वाह, गुरुदेव खुश होते थे। तो वो जब गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया तो धीरे धीरे उनको भी वो जोम आया, जैसे भूतों को आ रहा है ना, एक बीमारी हो रही ना गुजरात में, समझ गया ना? तो वो नहीं होगी हुई, तो लेकिन समाज ने स्वीकार नहीं किया, तो वो श्रीमद वालों के यहां चले गए और वहां श्रीमद वालों की श्रीमद की क्लास लगाने लग गए। तो श्रीमद वाले मान लेते हैं जल्दी, तो श्रीमद वालों ने उन्हें मान लिया। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। अब वो लोगों से कहें कि श्रीमद को 800 भव का जाति स्मरण था, क्या 1 घटना है, ये सब देवलाली में हुआ, सही घटना है, क्योंकि हम पंचकल्याण में प्रवचन करने जाते थे और वे गाने जाते थे, उनकी एक भजन मंडली थी, उनका नेता था वो, तो ऐसे 25वां पंचकल्याण किए हमने उनके साथ। अब आज सुबह के प्रवचन में आया था ना, अभी तुम लोग जाना एक दफे, शांति जी इनकी यात्रा रखो ना कहीं सोनगढ़ की, कहीं भी ले जाना, तो इनको बड़ौदा उतार के वहां ले जाना, कहां पालीन, और ये दिखा के लाना है? वहां एक मंदिर है, एक जैनी मुमुक्षु का घर रहा है और बाकी सब मतलब गैर मुमुक्षु लोग हैं। उस मंदिर में हम गए, हमने देखा तो गुरुदेव का फोटो लगा था और उसके साथ में 8-10 मुनिराजों के फोटो लगे थे, शांति सागर का, विद्यासागर का और कितने कितने सागर थे, नाम याद नहीं, लेकिन 8-10 फोटो थे, सब उसमें फोटो लगे थे। और मैं आकर के फिर हम बगल में उनके घर में, बिल्कुल बगल में वो मोक्ष भाई का घर था, तो उसने चाय पानी को हमें बुलाया तो हम गए, अजय बड़ौदा साथ में थे, बड़ौदा से गए थे, तो वहां ऐसी बातचीत चली, तो हमने कहा कि भाई ये अपना मंदिर है कि हाँ अपन ने बनाया, अपन ने, हमारे पिताजी ने पूरा खर्चा किया, ये किया, वो गुरुदेव पधारे थे, गुरुदेव उस पंचकल्याणक में गए थे, मूर्ति पे सब प्रशस्ति में लिखा है। तो मैंने कहा कि भाई बोले साहब हम तो अकेले ही हैं, यहां बाकी के सब जैनी लोग हैं, तो वो सब आते हैं, उनने सबने लगा दी, हम क्या करें। बोले हमने थोड़ी सी बात करी, कभी मन में विकल्प आया तो उन्होंने दूसरे दिन कांजी स्वामी की फोटो निकाल के फेंक दी, क्या अब तो मुनिराजों की लगी रहेंगी, क्योंकि उनका तो विशाल बहुमत था। इस सच्ची घटना उनने बताई हमको, दिन चाय पानी के साथ साथ उन्होंने निकाल दी। अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए, तो हम मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव श्री के पास गए कि ऐसा ऐसा हो गया, अपना बार है, सारी रजिस्ट्री हमारे नाम है, सब चीजें हमारे पास विद प्रूफ सब मौजूद है, और उनने ऐसा कब्जा कर लिया है और आपका फोटो हटा दिया और सबके लगा दिए हुए। कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है ठीक है, होने करने लगे फुट लगे लगे रहे तो लगे कि हम आपका हटा दिया कि हटा दें, कोई बात नहीं, शांति रखो। जब लोगों ने कहा कि ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बोले उस मंदिर को बंद करना है, कोई उसका दर्शन पूजन करने वाला नहीं रहे, ऐसा करना है, फिर तुम्हारी आमना के अनुसार पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है, करने दो। तुम नहीं करने दोगे तो दूसरा मंदिर बगल में बना लेंगे। मंदिर बनाने में देर थोड़ी लगती है, थोड़ी कसाय पैदा करना चाहिए क्या? किसी को भी अच्छी थोड़ी कसाय पैदा करो, मुझे कसाय पैदा करो तो मैं एक दूसरा स्मारक खड़ा कर दूंगा। अब चाहिए कोई ऐसा कसाय पैदा करने वाला हरेक को, हम दूसरा सोनगढ़ खड़ा कर देंगे। देवदारी वालों ने किया ना, वैसे ही मंदिर, वैसे ही जय, वैसे ही समूषण, वैसे ही मानसतम, ये सब क्या कहना, कौन करता था? कसाय नहीं जगती तो ये सब कसाय के खेल है। तो उनने गुरुदेव ने बिल्कुल कह दिया, कुछ नहीं करो, शांति से तुम रहो, उन सब होने दो, शांत जाएगा। फिर अपने रामी भाई जैसे लोगों से कही कि गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो रामजी भाई जैसे लोगों ने सलाह दी कि झंझट मत करो, उनका विशाल बहुमत है, तुम किसी तरह बैठ के और समझौता वार्ता करके कम से कम उनकी हटाने की किसी की बात मत करो। लेकिन गुरुदेव की जो उन्होंने हटा दी है वो फोटो द्वारा लगवाने की कोशिश करो, बस खत्म। तो उन्होंने बहुत कोशिश करा के, हाथ पैर जोड़ के, यहां वहां करा के, सबको इकट्ठा करके हमने कहा, तो वो जो फोटो थी पुरानी सिद्धार्थ जी, वो तो उन्होंने तोड़ फोड़ डाली थी, कुछ जो भी किया होगा, कुचल डाली होगी, क्रोध में आदमी क्या नहीं करता है। फिर दूसरी हमने नई फोटो ला करके वहां लगाई, सबने हमें मंजूरी दे दी, तो ऐसी जी एक फोटो लगी है बस। अब गुरुदेव के ऐसी परिस्थिति में क्या विचार थे, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या प्रमाण की जरूरत है? क्यों? देखो मैं प्रतिज्ञा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को इसलिए बताता हूं कि तुम्हें ये सब जगह फेस करना पड़ेगा। तुम्हें गांव गांव में ऐसी परिस्थिति का फेस करना पड़ेगा, उस दिन से तीन केस तो मेरे पास आ गए पिछले तीन दिन के भीतर। एक तो तुम्हारे गुरुजी है ना, बहुत लोकप्रिय गुरुजी, कौन है? कौन है तुम्हारे लोकप्रिय गुरुजी? अपने संजीव गोदा है ना, है ना लोकप्रिय गुरुजी। तो संजीव गोदा ने यहां विधान करने का नक्की किया था, जहां वे रहते हैं उसी कॉलोनी में, वहां 12 साल से प्रवचन करते हैं उस मंदिर में, और उनके जितने प्रवचन करने वाले हैं वो उनके बिल्कुल कैसे हो गए होंगे समझ लो, विद्यार्थी कैसे लट्टू हो जाते हैं, प्रवचन वाले भी हो ही जाते हैं ना सद तक विधान करने, और वहां झगड़ा पड़ गया। अब क्या करें बोलो, हमारे पास आए क्या करें, वो आए मंदिर बजे आए वो आए। मैंने कहा भैया झंझट में मत पड़ो, चुपचाप शांति से अलग हो जाओ और उन्हें करने दो जो माए महाराज को करने दो, जब महाराज चले जाए समाज फिर कहेगी तुमसे से फिर प्रवचन करना, नहीं प्रवचन और बंद हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले विमल जी नाम जब बता रहा हूं, कहता हमारे यहां एक तो महाराज आए थे रात भर रुक के चले गए, अब क्या करें, अब दूसरे आ गए वो अभी जमे हैं। कौन? आत्मार्थी तृष्ट है, और लोग हमें परेशान कर रहे। कौन लोग परेशान कर रहे तुम्हें? जो नाम बताया मैं नहीं बता सकता, समझ लो आप, कल्पना नहीं कर सकते आप, बस खत्म। ये दो दिन के पीछे के दो केस हैं, ऐसे गांव गांव में होंगे ऐसे केस देखना, और तुमको भोगना पड़ेंगे। हम तो यहां बज्र के किले में बैठे हैं, हमारे बाप का क्या करने वाला है, 80 बरस के हो गए तो कह देंगे बंद कर दिया, समाज से निकाल दिया, तो हम कहें हमें तो तबीयत खराब है इसलिए हम जा ही नहीं पाते हैं कि बोलना बंद कर दिया कि बोला ही नहीं जाता है, हमारे का क्या है, समझ बोलो आप, हमें काय का डर है? लेकिन ये सब हम तुम लोगों के लिए कहते हैं और बताते हैं कि किस वक्त कैसे तुमको भी तो बताना पड़ेगा। ऐसा किस्सा है, हम तुम्हें सुना रहे गुरुदेव का, ऐसा तुम्हें कभी गुरुदेव का कभी हमारा सुनाना पड़ेगा, कभी सुनाना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में इनने क्या किया था। तो अपनी भी बात क्या चल रही है दिव्यार्थियों ने कि अभी तो मुख्य गुण की बात मुख्य है बस। हम जैसा वास्तव में एक समय को भी शांति जी हम पर्यायार्थ नये को आज तक गौण नहीं कर पाए, एक समय को भी किया होता तो समय दर्शन हो गया होता, तुम दिव्यार्थ में मुख हो जाता और वो दिव्य के दर्शन होते, और जब उसके दर्शन होते तो उसमें अपनापन हो ही जाता। इतना सा तो मोक्ष मार्ग है कि तुम जब काय गुस्से कर रहे अध्यात्म क्या जी मुख्य मुख्य गौण मुख्य गौण करना, अरे इसका यही है मोक्ष मार्ग। क्या नाम है तेरा चक्केश, क्या नाम है नील, ये समझ ले इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। एक क्षण को आत्मा का दर्शन उसका नाम सम्यक दर्शन, और अंतर मुहूर्त तक लगातार आत्मा का दर्शन उसके केवल ज्ञान होता है। और वो अंतर मुहूर्त तो बात है कहने की, जो अंतर मुहूर्त आत्मा में रहता है फिर वो अनंत काल तक रहता है, तो उसे अनंत काल भी कह सकते हैं हम। फिर वो बाहर आता नहीं है, उसका उपयोग ख्याल में है ना, और उसमें सारा लोकालोक झलक जाता है, तो दुनिया जानने में आज उसमें कहां विरोध है। लेकिन ये वो वास्तव में ध्यान की बात है, हम उसे गौण करेंगे, इसको मुख्य करके उसमें हम उसे जानेंगे तो हमें वो पूरा अच्छी तरह स्पष्ट दिखाई देगा। और फिर कहते पर्यार्थिक नये को मुख्य करो, क्यों करो पर्यार्थिक नये को, कि पर्यार्थिक नये को मुख्य नहीं करेंगे तो पर्याय समझ में नहीं आएगी असलियत में। अब कहता हम नहीं करें पर्यार्थिक, क्या बोलते हैं ना बोलो कि पर्यार्थिक नये को कभी मुख्य करना ही नहीं, हमेशा दिव्यार्थिक को ही मुख्य करना। अब और एक समय को दिव्यार्थिक को मुख्य किया ही नहीं और पर्यार्थिक ही मुख्य हो रहा है, कैसी विचित्र स्थिति है। क्योंकि दिव्यार्थिक मुख्य हो गया होता और पर्यार्थिक में पूरी तरह गौण हो गया होता तो वो तो समदर्शन हो जाता। जो निरंतर जिसमें पड़े हैं वो एक समय को भी नहीं करना, ऐसी कहता है। कि वो अनंत भगवान ने कह दिया ना, फिर वो अनंत काल तक क्यों चिंत निज में थिर भई जिन्हें अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेन्द्र वा। मुझे ये नहीं सुनाना है, हाँ वो सुनाना है। रही है अनंतानंत काल तथा तथा सिर परमय, अनंत काल तक रहेंगे जैसे वे परिणत हो गए तो अपने को जानते रहेंगे अनंत काल तक। कहा फिर पर का क्या होगा कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में आ जाएगा। फिर वहां ये मुख्य गुण की व्यवस्था खत्म हो गई ना, क्योंकि मुख्य गुण तो उसको होता है कि जिसको ज्ञान में कमजोरी होती है। क्यों ऐसा, आप हमने पूजा की तिथि रखी है 1,00,000 रुपए करेंगे और आप चाहें तो 5 साल में 20,000 दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं व्यवस्था पर जो सुना सूचना वो ही मानना सही, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं नहीं तुम कहोगे तुमने कहा था क्यों, अरे ये किसके लिए है बोलो, साफ कह रहे ना कि एक साथ में देने की हैसियत नहीं हो, नहीं दे सकते हो तो। अब तुम्हारे तो समस्या है कि रखें कहां, क्यों मनुभूतन जी तुम्हें तो ठिकाने लगाने की पड़ रही है। तुम तो ये कहो कि तुम्हें 5 लाख ले जाओ, 1,00,000 उसमें रख लेना और बाद में हम कभी बोलेंगे तो फिर इसमें जमा कर लेना, तुमको हम किस पे क्या बताएं क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हैं जो दो नंबर के, मैं कहां रखूं, मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो समस्या ऐसी है, केवल ज्ञान को तो सारा लोकालोक, और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी उनके ज्ञान के गेय बन जाते, सबसे पहले इसी सभा में यहीं बैठ के मैंने इस बात का विरोध किया था। परमात प्रकाश में लिखा है, कोई तुम्हारा विरोध नहीं किया था, टीका में लिखा है क्या? क्यों किया था विरोध आपने? कि इसका अर्थ ये हुआ कि अनंत लोक होते तो उन्हें जान लेता केवल ज्ञान, माने केवल ज्ञान ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है। क्यों? कि ज्ञे की कमी की वजह से उसका जानना रुक गया, तो पूरा ज्ञान का विकास नहीं हो पाया ना, वो भी ज्ञे की कमी से। तो ऐसी असत कल्पना करने से क्या फायदा कि अनंत लोक होते, वस्तु स्थिति तो यह है कि है ही नहीं, ये परम सत्य तो यह है कि वो इतना ही है और जितना है उनने जाना है, बस झगड़ा खत्म। और होता तो और जान लेता, और होता तो उदाहरण दिया उनने, अब उनने दिया कि एक पेड़ पर एक बेल चढ़ी तो वो कितनी ऊंची गई कि जितना ऊंचा पेड़ था, मान लो पेड़ 50 फुट ऊंचा है तो 50 फुट तक जाएगी। अब ये कहते पेड़ यदि 55 फुट का होता तो वो बेल 55 फुट तक चली जाती, लेकिन वो रुक गई 50 फुट पे, क्योंकि पेड़ नहीं था, ऐसा उदाहरण दिया। तो ये तो सिर्फ महिमा बताने के लिए उदाहरण दिया। ये बात मैं इसी गद्दी पे यहीं बैठ करके प्रवचन कर रहा था, उस सोनगढ़ी में एक मोक्षु थे, उनका नाम था राजमल जी, और वे छाबड़ा थे और कुचामन के रहने वाले थे। कुचामन जानते हैं बाद में, और वो भी जौन वाले थे, समझे ना? मैंने इस बात का बहुत जौन था कि मैं बहुत कच्चा हूं, सत्ता मोक्षु हूं, मैंने सारा धंधा पानी छोड़ करके और जो बहुत अधिक काल इसमें देता हूं, तो ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, ऐसा उनका बहुत जौन था। तो यही बैठे बैठे विरोध किया कि नहीं ये बात गलत है, परमात्मा प्रकाश में ऐसा लगा। मैं कहा परमात्मा प्रकाश के ही तो अर्थ में कर रहा हूं ना, थोड़ी नोकझोंक हुई फिर ज्यादा तो क्या होना था। वो गए सोनगढ़, तो जाकर के वहां गुरुदेव की सभा में और सब जगह लोगों से कहा कि डॉक्टर भायल ये कहते हैं इतने केवल ज्ञान में इतनी ही सामर्थ्य है कि जितने पदार्थ हैं उतने को जाने हैं, और ये परमात्मा प्रकाश की बात नहीं मानते हैं। और हमने बताया कि गुरुदेव ने प्रवचन किया था परमात्मा प्रकाश, तो उसमें भी गुरुदेव ने वही अर्थ किया कि अनंत लोक होते तो वे जान लेते, तो गुरुदेव आपकी बात भी नहीं मानते। बहुत अलग अलग कई दफे हुआ अपने साथ, कोई एक दफे का खेल थोड़ी है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि सब चुप रहो, 15 दिन बाद वो यहां आने वाले हैं, तब अपन बात कर लेंगे, लेकिन कल से कोई इस बात की चर्चा यहां नहीं करेगा, बंद कर दी। अब 15 दिन बाद हम पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से ही लोग आए कि तुम्हारी खबर ली जाने वाली है, तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। उनके ठीक है भाई, यानी हमारा सचमुच गुरुदेव का बहुत अनंत बात्सल्य हमें प्राप्त है, हमें भरोसा भी था और वे लोग भी समझते थे, और ऐसे लोग चाहते थे कि थोड़ा वो कम हो जाए। ऐसे बहुत लोग सोनगढ़ में थे जो ये चाहते थे कि इसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाए। तो हम गुरुदेव ने कहा मुझे भैया क्या बात थी, तो हमने वही सब तर्क युक्ति से सब बस समझाया। उन्होंने कहा ठीक है, प्रवचन में कह दिया, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं ना, वस्तु स्थिति तो यही है। मैं एक मिनट में खत्म कहते 25वें दफे हुआ कि जब गुरुदेव श्री के अदालत में बात पहुंची और उनके कमेंट से मामला अपने पक्ष में फैसले में गया। क्या अब वो कहती कि वो चीजें हमारे वो तत्व ज्ञान की उस धारा से जुड़ गई, जैसे मान लो जब भी ये आएगी ना केवल ज्ञान में कितनी शक्ति है, जो अनंत को जानने की है वो अनंत होती है, तब उस वक्त वो घटना हमें याद आ जाएगी और हमको कहे बिना चैन नहीं पड़ेगी। वगैरह क्यों सुनाते हो? एक एक के साथ ये सब घटनाएं जुड़ी हैं। अभी मैं सुनाता हूं जो बीच बीच में शांति जी उसके साक्षी हैं, क्योंकि दूसरे बैच के हैं ना, तो उसी टाइम तो आते थे वो यहां, उसी टाइम होता था क्या माने। अभी ये सब अभय कुमार जी, शांति जी, ये सब हैं, सतीश भाई वगैरह भी थे, लेकिन सतीश भाई वगैरह कुछ समझ में नहीं आता क्या है, तो उनका क्या कहें कि उन्हें क्या याद है क्या नहीं है, समझ रहे ना। तो ये लोग सब थे, एक ये जो पदार्थिक नय को गौण करना सीखना, एक समय को भी हमने गौण कर लिया प्रैक्टिकल, तो सम्मदर्शन हो जाएगा। लेकिन उसको जानना पड़ेगा, वो जाने बिना गौण नहीं होगा। कि हमने आलू छोड़ दिया, क्या हम तो सब छोड़ देते, आलू के जमीकंदों के वो शकरकंद भी छोड़ दिया हमने, क्या होता है शकरकंद, क्या हम नहीं जानते क्या होता है, कि देखा है तुमने, कि हमने नहीं देखा, आपने कह दिया हमने छोड़ दिया। अब शकरकंद आएगा तो खाओगे, वो कह दोगे शकरकंद छोड़े, खाते खाते भी कहोगे हमने शकरकंद को छोड़ दिया, क्योंकि तो शकरकंद को जानते ही नहीं हो, नहीं जानते हो तो कैसे छोड़ोगे बोलो आप। तो तुमको वो पर्याय को गौण करना है, वो जानकर गौण होती है, बिना जाने गौण नहीं होती है। नहीं वो नहीं जानना अज्ञान है, और जानकर उपयोग में नहीं आना ये गौण करना है। परमात्मा समझ रहे क्या अंतर है दोनों में, पूछो तुम लोगों से। अब तो सब विद्यार्थियों के सामने इज्जत का सवाल है नहीं पूछूंगा घबराओ मत, लेकिन उपयोग तुम इस पर ध्यान दो, ये कहना चाहता हूं मैं। समझ जाए कि नहीं कि भाई तुम उसको कि हमने क्या छोड़ा, तो तुम्हें उसको पता तो होना चाहिए। अब वो बीमारी कहां तक गई मालूम, कि पर्याय को गौण करना, फिर पूरी तरह गौण करना, फिर पदार्थ नाम का नए ही हमको कभी आंख खोलना ही नहीं है ना। हीरे वाले कहेंगे हम इस आंख को हम फोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी खोलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? नहीं, खोलना पड़ेगी, खोलने के लिए है वो आंख, समझे ना। वो आंख बंद रखने के लिए नहीं है, और फिर बाद में अनुभव के काल को छोड़कर और दूसरे काल को छोड़कर 24 घंटा दोनों आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, दिव्यार्थक नय की चक्षु भी और पर्यार्थक नय की चक्षु भी, है ना। एक रखना, एक बात बताइए तीसरे वाक्य में कौन सा है, तीसरा नहीं, अभी इसमें एक वो घास पत्ते काठ की अग्नि का उदाहरण दिया है जिस पे अपन ने चर्चा नहीं की है, है ना। मिला क्या लिखा देखो, क्योंकि जिस प्रकार कंडे घास पत्ते और काष्ठ की अग्नि कंडे घास पत्ते और काष्ठमय है, इसलिए इनसे अनन्य है पृथक नहीं। देखो चार अग्नि है, कौन कौन सी, एक कंडा की अग्नि, एक घास की अग्नि, एक पत्ते की अग्नि और एक लकड़ी की अग्नि। अग्नि तो एक ही है, लेकिन ईंधन चार हैं, तो किस ईंधन को जला रही है वो अग्नि, उसकी बात है। अब इसमें अन्यता और अनन्यता की बात दो तरह से हो सकती है, कि एक तो ये कि कंडे की हो चाहे पत्ते की हो चाहे काठ की हो, अग्नि तो अग्नि ही है, सब अग्नि अनन्य माने एक है, एक ये अर्थ हो सकता है। और दूसरा क्या, कि अग्नि कंडे से अनन्य है, वो ईंधन से अनन्य है, जलता हुआ कंडा, कंडा है कि अग्नि, समझ में आया कि नहीं है? जलता हुआ लकड़ा लकड़ा है कि अग्नि? वो दो मत पकड़ना, दो माने एक आधा जल रहा है ना लकड़े का, ऐसा होता है सर्दियों के दिनों में आपने गांवों में देखा होगा, वो अलाव लगा रहता है ना, तो बड़ा सा ठूंठ लाके डाल देते हैं, तो एक तरफ तो उसमें आग रहती है, तो आग रहती है और दूसरी तरफ वो लकड़ी रहती है। लकड़ी में अग्नि चालक कुल चालक क्या होता तुम्हारा, वो नहीं है, इसलिए वो गर्मी वहां नहीं जाती। लोहे में जा तो वहां नहीं छू सकते, यहां लोहा अग्नि में हुए तो वहां भी नहीं छू सकते उसे, लेकिन लकड़ी में आराम से रहते हैं। तो वो लकड़ी भी है और अग्नि भी है, तो कहते लकड़ी नहीं है, अग्नि अग्नि है और लकड़ी लकड़ी है, उसमें जो हिस्सा अग्नि हो गया वो अग्नि है, लकड़ी नहीं है, और जो हिस्सा अभी जला नहीं है वो लकड़ी ही है, अग्नि नहीं है। तो अग्नि और वो ईंधन अनन्य है, वो ईंधन से अन्य नहीं है। देखो पढ़ते हैं अपन क्या लिखा, जिस प्रकार कंडे घास पत्ते और काठ की अग्नि, कंडे घास और पत्ते और काष्ठमय है, इसलिए इनसे अनन्य है। घास की अग्नि घास से अनन्य है, कंडे की अग्नि कंडे से अनन्य है, यही है ना इसका अर्थ। देखो पृथक नहीं है, उसी प्रकार जीव द्रव्य भी उन उन पर्याय रूप विशेषणों के समय उन विशेषों से तन्मय होने से उनसे अनन्य है। ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान की जो पर्याय है, समझ में आए ना, तो वो ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा से अनन्य है एक तो, और उस ज्ञेय से अनन्य है दूसरी बात। यदि आप समझ ना, अनन्यता दो तरह से घटित की जा सकती है ना, तो यहां आत्मा से अनन्य है ये नहीं बता रहे, उस ज्ञेय से अनन्य है। वो अपने कौन सी 31 32 33 गाथा में, 31वीं गाथा में आता है ना, द्रिविंद्री भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ वे भी इंद्रिय है, आता ना, समझ में आ गया ना, वो प्रज्ञा ख्याल में आ गया। वो क्या कहते हैं कि ये रूमाल है ना, ये रूमाल है, ये पक्की बात है ना, अच्छी तरह देख लेना। अब 31वीं गाथा क्या कहेगी कि ये आंख है, नहीं? ये आंख है, रूमाल नहीं है कि हां आंख है, क्योंकि आंख ने जिसको देखा उसे भी आंख कहते हैं, ये 31वीं गाथा में है। अब तुम सब समय सार पाठी हो ना, उसके क्या अर्थ हुआ कि वो गे सारा लोका लोक केवल ज्ञान की ज्ञान पर्याय का गे है, तो लोका लोक ज्ञानमय हो गया, समझ गए ना आप, लोक ज्ञान लोका लोकमय हो गया, वो ज्ञान से गे अनन्य हो गया। यानी मतलब गे को नहीं जानता, वो कहते ना पर को नहीं जानता, शांति जी। अब ये ऐसी कानूनी दाव पेंच है जो अदालत में बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए देकर करते हैं, और उनको वो समझते तो है नहीं, और ठोक रहे कि देखो क्लियर लिखा, देखो क्लियर लिखा, देखो क्लियर लिखा, वो पर को नहीं जानता, अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, पर को नहीं जानता है, अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। क्या इतने मोटे तर्क इनकी समझ में नहीं आते कि यदि नहीं जानता ना, तो पांच द्रव्य हैं, सब अपने को ही जानते हैं, तो दूसरे जो अजीब द्रव्य हैं वे तो जानते ही नहीं है, तो उन्हें किसने जाना, और दूसरे एक द्रव्य दूसरे को जानता नहीं, तो वे पांच द्रव्य तो बिना ही जाने रह जाते। और अब शास्त्र में लिखे हैं कि छह द्रव्य होते हैं, तो ये बात जानकर लिखी कि बिना जाने लिखी, आप सोच जानकर लिखी कि नहीं लिखी, तो जानने में आते कि नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं कि ज्ञान पर्याय को जान, अरे भाई साहब वो ज्ञान पर्याय को जानते हैं, उसमें जो गे जाना गया उसको ज्ञान जानता है, ऐसा कथन भी जिनवाणी में आता है। इसलिए मैं कहते वो ज्ञान गे आकार है कि ज्ञानाकार है, तो मैं समझाता हूं ना, गे आकार भी है ज्ञानाकार भी है,
वो समझते हैं ज्ञान गेयाकार अलग होता है और ज्ञानाकार अलग होता है, लेकिन एक ही चीज के दो नाम हैं। अब अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आता है। देखो दर्पण में एक मोर दिखाई देता है, एक मोर यहां खड़ा है और दर्पण में वो मोर झलक रहा है। अब जो दर्पण वाला मोर है वो मोर है कि दर्पण है? क्लियर तो मोर दिख रहा है, तुम्हें दर्पण नहीं दिख रहा। तो इतनी सी कह रहे कि तुमने मोर नहीं देखा, दर्पण देखा है, क्योंकि मोर तो यहां है ही नहीं। आप समझे ना? वो उसी को कहते हैं दर्पण देखा, उसी को कहते हैं मोर देखा। दोनों का एक अर्थ है, बस दो अपेक्षाएं हैं। हमारी ज्ञान पर्याय में जो गे जानने में आया तो कहते कि आत्मा वो गे को नहीं जानता, अपने ज्ञान पर्याय को जानता है। तो अपने को जानना हो गया और पर को नहीं जानना हो गया, ये अपेक्षा ऐसी हो गई। और उसको पर को जानता क्या जानता है? वो जो जानने में आया कि मोर ऐसा ऐसा होता है, तो वो बात सच्ची है कि झूठी? ऐसे मैंने पांच उंगलियां दर्पण में पांच उंगलियां झलक गई और तुमने वहां से कहा कि ये पांच उंगलियां हैं, तो ये बात सच्ची है कि झूठी? कहने में तो दर्पण है, उंगलियां पंगलियां कहां है, उंगलियां पंगलियां कहां है? और तुमने तो दर्पण को देखा है, तुमने उंगली को कहां देखा है? अरे तुम तो दर्पण की बात करते हो, हमने तो अखबार में देखा हो और फिर भी हम कह दें हैं कि काश्मीर में बहुत बर्फ पड़ी है, तो उसको भी काम चलता क्या नहीं चलता है? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई अखबार में पढ़ लें कि काश्मीर में बर्फ जमी है तो उन्हें जो काम हो जाता है। उन्हें गेव को जानने से इतनी एलर्जी है कि किसी तरह गेव को जानने की बात आती है तो भड़क जाते हैं। देखो समझो आप कि आज तक एक समय को गेयों को जानना गौण नहीं हुआ, गौण नहीं हुआ, नहीं तो नहीं की बात तो जाने दो। तो एक समय को गौण होता तो दुर्व्यास कहने का विषय ज्ञान का गेय बन जाता और सब में दर्शन हो जाता। और फिर इतने उन्हें नहीं जानना, उन्हें नहीं जानना। अब देखो जरा कहां से कहां पहुंचती है गाड़ी। पहले तो हो गया कि हमें पर को जानना नहीं, क्योंकि पर के जानने से कोई लाभ नहीं। यहां से बात शुरू होती है, अपने को जानो। यहां से बात शुरू होती है, फिर आगे बढ़ती है कि वो जानना ही नहीं, क्योंकि बेकार है, जानने से फायदा नहीं। आज तक जाना नहीं है, आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, पर को जाना, इसको जाना, ऐसा करते करते फिर उसमें से क्या निकल आता है? आत्मा पर को जानता ही नहीं है। वो जानना नहीं में से जानता नहीं कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। तुम्हारे समझ में आ गया अंतर के? नहीं समझ में तो सबके आ गया, लेकिन नहीं आ गया वो लोग हाथ उठाए, कोई नहीं होता। अपने को अज्ञानी कौन घोषित करे? मैंने उनने तो ये कहा था कि उधर तुम जाना नहीं, और तुमने अर्थ निकाल लिया कि हम उधर जा सकते नहीं। जा सकते नहीं कि तो हमने आपसे कहा ही नहीं, क्यों? तो हमने कहा कि जाना नहीं, तो उसमें तो बहुत शर्तें हो सकती हैं। कब नहीं जाना? अभी नहीं जाना, आध घंटे बाद तो सबको खोल दी जाएगी प्रदर्शनी, अभी उद्घाटन होना है, क्यों? उसमें क्या है? अभी सबको खोल दी जाएगी, सब देखते रहना दिन भर। अभी पहले मिनिस्टर साहब आएंगे, हो तो कुछ थोड़ा आडम्बर फाडम्बर करना पड़ेगा ना, उन्हें जो पीता मीता कटवाना पड़ेगा। इसलिए तो जब को मना करते हैं तो तुम सदाकाल, उनने तो इतने समय को मना किया था, इन्हें सदाकाल मना समझ। उन्हें तो अनुभूति के काल में पर को जानने में नहीं आता, मान लो ऐसा कहा, यद्यपि लब्धि ज्ञान में तब भी रहता है, लेकिन हम झंझट में नहीं पड़ते हैं, तो नहीं आता समझ लो, तो एक क्षण की बात को तुमने त्रिकाली कर दिया कि जानना ही नहीं, और जानना बंद का कारण बता दिया, अब इतने आगे बढ़ गए। अभी अनंत भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, तो कितना बंद होता होगा, तो सब जानने वाले को बंद बिल्कुल नहीं होता है, और हमने पर को जानने को बंद का कारण मान लिया। उपयोग कहीं जाने मात्र से बंद नहीं होता। अपने शास्त्रों में लिखा है कि छपक श्रेणी में भी एक पदार्थ से उपयोग बदल के दूसरे पदार्थ पर जाता है। एक से दूसरे पर जाएगा तो अपना आत्मा एक पदार्थ है, तो उससे कोई दूसरा पदार्थ कोई पर ही होगा ना। वो टोडरमल जी की बहुत बड़ी विशेषता है। वो क्या विशेषता है कि उनने कहा कि वो छपक श्रेणी की जो गति वो ऊपर चढ़ रहा है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आता, वो तरक्की होती रहती है। बंद की प्रक्रिया नहीं होती है, और कर्म करने का काम चालू रहता है, और वो कर्म इसका मतलब पर के जानने के काल में भी वो प्रक्रिया चालू रही, तो पर को जानना बंद का कारण कहां हुआ? फिर वहां कहते हैं कि उसने पर का क्या किया, उसने तो अपना जानने का जो स्वभाव था, स्वर पर दोनों को सुपर प्रकाशक स्वभाव था ना, उसका परिणमन हुआ है अबुद्धिपूर्वक। उसने बुद्धिपूर्वक तो कुछ किया ही नहीं, वहां अबुद्धिपूर्वक परिणमन हुआ है। तो उसका यदि हम किरणमय पर्याय की अपेक्षा कहें तो उस समय की ज्ञान की पर्याय का जो गेय बनना था वो बन गया, झगड़ा खत्म। हमको उसमें नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। वस्तु का जो स्वरूप है, उसका जो प्रणमन है, उसमें जो हमारे दिमाग में जो ऑब्जेक्शन खड़े होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि होना चाहिए चाहिए क्या होता है, पर हमारे चित्त को वो वस्तु का स्वरूप स्वीकृत होना चाहिए है? नहीं, नहीं 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 होता तो अच्छा रहता, ये नहीं है वस्तु का स्वरूप। नेमिनाथ ने कहा कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, बस एक ही सत्य है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। तुमसे किसने पूछा कि ये अच्छी है कि बुरी? तुमने ये काय को तुमने फैसला सुना रहे? तुम्हें न्यायाधीश किसने बनाया? क्यों कि अच्छी नहीं कि सच्ची? हाँ सच्ची होगी, सच्ची तो सच्ची की उपेक्षा कर रहा है और उसमें अपने राग द्वेष के हिसाब से अच्छी कह रहा। मैं कहता हूं कितनी अच्छी बात थी, भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ही ऐसी अच्छी बात आई, ध्यान घबराना नहीं, और भी अच्छी बातें थी, लेकिन सबसे अच्छी बात थी क्यों कि हजारों मुनि ने दीक्षा ले ली, हजारों ने अनुरोध धारण कर लिए, हजारों सम्मान दृष्टि हो गए, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? जगत में जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं, ऐसी द्वारका जलने जैसी हजारों घटनाएं एक वर्ष में सारी दुनिया में होती हैं, हजारों। आज इस देश के कोने में यहां बाढ़ आ गई, यहां पर ये हो गया, यहां ये हो गया, उसको जाने दो ना, यहां चींटियों का घर है और वहां से लाखों चींटियां आती जाती हैं, और वहां एकदम वर्षा से हम जाकर के एक घड़ा पानी, हमें तो पानी फेंकना है क्योंकि नया ताजा भरना है, तो बस उसके मोंड लगा के और उसके बिल के ऊपर डाल देते हैं, अब ये सब मर जाती हैं, तो ये उनकी द्वारका तो खत्म हो गई, उनका पूरा नगर बसा हुआ था अंदर। ऐसी घटनाएं रोजीना चारों तरफ हो रही हैं, लेकिन किसी को एक क्षण पहले पता नहीं चलता। और ऐसा भी हो सकता था कि जब नेमिनाथ नहीं बताते तो वह द्वारका भी ऐसी हो जाती घटना, और एक क्षण पहले पता नहीं चलता, समझ आए ना, तो जो होता सो हो जाता, जो मर जाते, जल जाते, जल जाते, जो कुछ दुनिया में होता है वो हो जाता। अब उन्होंने 12 वर्ष पहले बता दिया, तो नहीं बताते, कैसा नहीं बताते, तो कम से कम 12 वर्ष तो मजे से रहते, अब तो इन्हें हमारे 12 वर्ष भी खराब कर दिए। अरे तुमको 12 वर्ष का मौका मिला जिस जो दुनिया में कहीं किसी को नहीं मिलता, तुम्हें जो करना हो, धर्म करना हो, मोक्ष में जाना हो तो मौका मिला, नहीं करना हो, व्रत नहीं लेना हो और ऐसी गृहस्थी में अकेला जिंदा रहना हो तो भी मौका है। अकेले द्वारका में बताई थी ना, अहमदाबाद आ जाते, क्या दिक्कत थी, सूरत आ जाते इतनी दूर। अरे वे तो मथुरा से गए थे भाई साहब, मथुरा से कितनी दूर है द्वारका, उससे तो सूरत से अहमदाबाद से आधी भी नहीं होगी, राजकोट आ जाते और पास में, क्यों जली तो द्वारका है, वो समुद्र के भीतर जो थी वो बाहर वाली थोड़ी चली, जान ही बचाने थी तो वो जान बचा के आ जाते भाग जाते। वो 12 वर्ष में तो अपने घर की एक एक ईंट लाना चाहते तो ले आते, और ऐसा करते कि और लोग जो भागते हुए तो उनकी संपत्ति खरीद खरीद के भाभी ले आते तो अरबपति बन जाते, नहीं होते तो ही, क्योंकि लोग बेचते जल्दी फटाफट क्या करे, क्यों लेकिन नहीं सूझी, ऐसे तो होती रहती है, रोजीना अखबारों में आता रहे मुंबई डूब जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आज तक तो डूबी नहीं बेटा, डूब गई होती तो तुम ऐसा कहने को नहीं होते हैं, जिस दिन डूबेगी डूब जाएगी फिर उसमें कौन कहेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा एक क्षण पहले, फिर हम भाग जाएंगे फिर ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन हम तो फटाफट प्लेन से निकल जाएंगे, लेकिन प्लेन चलेगा ना जब एयरपोर्ट भर जाएगा पानी से, पहले निकल जाओ उसमें क्या है, अगर बम्बई नगर है और नगर नहीं है, उनमें कोई धंधा पानी नहीं है तो वो द्वारका वाले क्यों नहीं चले गए। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतने लोग द्वारका में कैसे रह गए। और मैं एक खतरनाक बात कहता हूं, समय हो गया है कि इतने लोग भगवान नेमिनाथ के समुसरण में उनकी बात सुनकर नहीं मानने वाले थे। क्या कह रहा हूं, क्या कहा समझ में आया अध्यात्म, इतने लोग ऐसे थे कि इनके तो मन में जो आई सो कह गई, इन्हें नहीं पता कि द्वारका जलना कहने का क्या अर्थ होता है, हमारा तो सब कुछ साफ हो जाएगा जैसे भगवान जला रहे। अरे तुम बचा लो इसके लिए उपयोग नहीं कर सकते हो, उसकी बात तो करते नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगी, कैसे जल जाएगी, चारों तरफ पानी पानी, यहां तो कोई पानी मानी नहीं है आसपास, जयपुर में आग लगे तो पानी कहां से लाएंगे, पीने को तो पानी नहीं है, आग बुझाएंगे कहां से, वहां तो द्वारका चारों तरफ पानी ही पानी थे, कुआं खोदते थे तो 3 हाथ पर पानी निकलता था, क्योंकि ऐसी ऊंची थी थोड़ी जमीन, उस पर तो बस गए थे टापू में, तो उसे खोदेंगे तो पानी तो निकलेगा ना नीचे, इतना तो पानी था, चाहे जितने झीले चाहे जितने चारों तरफ, जहां से कोई बहुत लंबी चौड़ी तो थी नहीं, जो भी थी तो उसको तो वो पानी से बुझा देंगे, कैसे चल जाएगी, ऐसी ऐसी सोचने वाले बहुत लोग थे। ये तीर्थंकर परमात्मा हैं, इनकी वाणी में बिल्कुल सत्य बात आती है, इन्हें कोई राग द्वेष नहीं है, इनके ज्ञान में आई तो वाणी में आ गई है, ऐसा स्वरूप जानने वाले भी नहीं थे, पहुंच गए थे देखा देखी, कि हम तो सुना है कि मिथ्या दृष्टि नहीं जाते हैं समुचरण में, मिथ्या दृष्टि माने वज्र मिथ्या दृष्टि, ये विरोधी मिथ्या दृष्टि, ये झंडा लेने वाले मिथ्या दृष्टि, वो नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर इतना पुण्यशाली होते हैं कि वहां एक जाते नहीं है, जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि खड़े होके कुछ बोलें, इतने पुण्यहीन होते हैं, और इंद्र जैसा व्यवस्थापक होता है वज्रधारी कि बेटा कुछ कहा तो समझ लेना फिर बस खत्म, वो इसलिए है विरोध नहीं होता का मतलब ये है, लेकिन अंदर में नहीं मानना ये विरोध ही तो है, ये वस्तु का स्वरूप इतने को सम्मंत्रण क्यों हुआ, और ज्यादा को क्यों नहीं हो गया? वो द्वारका जलेगी इससे सम्मंत्रण क्यों हो गया? शांति जी, आत्मा नहीं समझाया था आपने, वो आत्मा के समझाने से तो नहीं हुआ, वे आत्मा के समझाने में निमित्त नहीं थे। क्या अभी जो सोचते रहते हो, क्या नहीं सोचेंगे? सोचते रहते हैं, कहां कहां क्या क्या रिएक्शन हुए, कैसे होना चाहिए थे, क्यों हुए, वो उनको ऐसा क्यों हुआ, तो उनके पांचों संवाय वहां से जलकर मरने के ही थे। इसलिए तुम चाहे जो कुछ बता दो उन्हें, केवली भगवान कर वे तो वहां जाके मरेंगे। बस अंत में एक बात कह के खत्म करता हूं, ये हो गए 5 मिनट ज्यादा मुझे मालूम है। श्री कृष्ण को तो वहां रहना जरूरी था, क्योंकि राधे ही भग जाता तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करता, वहां द्वारका को बचाता कौन? उनकी तो अंत तक ड्यूटी थी ना कि उनके नगर की सुरक्षा करना, ये करना, जो नागरिक रहे उनकी सबकी। यदि मान लो आप है बॉर्डर पर झगड़ा हो गए तो जनता को तो भगाते हैं और सेना को भेजते हैं, यदि बाढ़ आनी हो समुद्र में तो वहां जनता को भगाते हैं और सेना को भेजते हैं, तो वे तो थे रहना चाहिए। माँ बाप को काय को रखा, बुढ़े माँ बाप को काय को रखा, उन्हें तो राजकोट भेज देते। जबकि कह दिया गया था कि तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं बचा पाओगे तुम, पर्टिकुलर नाम लेके कह दिया था परमात्म, लेकिन नहीं आए समझा। अब हम ये कहें कि उन्हें भरोसा नहीं था तो आप मानोगे नहीं, जो होता तो फिर कम से कम मां बाप को तो बचा ही लेते ना। मैंने जितने लोग वहां रहे मेरे दिमाग में तो ऐसा आया कि दूसरे दिन पूरी द्वारका खाली हो जाना चाहिए थी, हैं? एक दिन में खाली हो जाना चाहिए थी, 12 वर्ष में नहीं हुई, इसका क्या मतलब? उन्हें कौन बचा है, हैं? उन्हें कौन बता सकता है? जिसको मरना ही है, जिसकी जो होना है वो होकी रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी।